الحمد لله وكفى وسلام على الذين اصطفى. أما بعد، حكيم الأمة مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تعالی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات مبارکہ میں سے ایک دو ملفوظ سنائے جاتے ہیں. ایک مختصر ملفوظ ہے، فرمایا کہ جس دوستی کی بنا فاسد ہوگی آخر میں عداوت ہوگی. جس دوستی کی بنا فاسد ہوگی آخر میں عداوت ہوگی. اور دوران درس مثنوی فرمایا تھا کہ غیر اللہ کی دوستی کا انجام آخر عداوت ہے. دونوں باتیں بہت اہم ہیں. دنیا میں دوستی مختلف لائن سے، مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. کسی سے دوستی ہو گئی کہ بھائی وہ آدمی بڑا مالدار ہے، ہمارے کام آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس لیے دوستی کر لی. کسی سے دوستی ہوتی ہے جیسے آج کل لو اور عشق چل ہی رہا ہے دنیا میں، اور اس پر دوستی ہو جاتی ہے. کوئی گرل فرینڈ بنتا ہے، کوئی بوائے فرینڈ بنتا ہے، یہ بھی ایک دوستی ہے، لیکن اس دوستی کی بنا فاسد ہے، صحیح دوستی نہیں ہے. اس لیے آخر میں عداوت ہوگی. کیا ہوگی بھائی؟ عداوت، دشمنی. چنانچہ نتیجہ سامنے، ہزاروں کیسز واقعات سامنے آتے ہی رہتے ہیں کہ شادی کی دوستی کی بنیاد پر، تلاش کی بنیاد پر نہیں، اور رشتے کو صحیح معنی میں کہ آئندہ کے لیے رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نباہ کا ذریعہ بنے، دین کی نسبت ہو، وہ بات ہوتی نہیں ہے. برسوں کے بعد جا کر بھی وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، دوستی ختم ہو جاتی ہے. کتنے کتنے نقصانات ہوتے ہیں آج دنیا کے سامنے، پھر بھی اس سے لوگ ہٹے نہیں ہیں. تو چاہے وہ دوستی ہو عشق کی بنیاد پر، یا کسی سے دوستی ہو مال کی بنیاد پر، یا کسی سے دوستی ہو کرسی کی بنیاد پر کہ بھائی یہ بہت بڑا عہدے دار آدمی ہے، اس سے دوستی رکھو، ورنہ نتیجہ بعض مرتبہ مضر ہو سکتا ہے. یہ سب غیر اللہ ہے. غیر اللہ کی بنیاد پر جو دوستی ہوتی ہے اس کا انجام آخر میں عداوت اور دشمنی ہوتا ہے. وہی دوستی کام آتی ہے جو اللہ کی نسبت پر ہوتی ہے. اللہ باقی، اس کی نسبت پر دوستی بھی باقی. اللہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، تو جو اللہ کی نسبت پر دوستی کرے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گا. چنانچہ بہت سے لوگ کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، لیکن حج کے سفر میں ساتھ ہو گئے، اور اس سفر میں ایک دوسرے کا ساتھ تعاون رہا، وہ ایک دوستی ہو گئی، قائم رہتی برسوں تک. لوگ یاد کرتے ہیں، جماعت میں گئے، کوئی اتا پتا کچھ نہیں تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا، چلہ ساتھ میں رہے، دو چلے ساتھ میں رہے، ایک تعلق ہو گیا، تو اب وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. دوستی کرتے ہیں لوگ مشائخ سے، بزرگوں سے، کیوں؟ اللہ حاصل ہو جائے، اللہ مل جائے، یہ اللہ کی نسبت پر دوستی ہے، باقی رہتی، ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں. جتنے دن گزرتے ہیں اتنی اور محبت میں قوت پیدا ہوتی ہے، مرتے دم تک آدمی اس سے تعلق رکھتا ہے، مرنے کے بعد بھی یاد کرتا ہے، وہ ہمارے شیخ تھے، وہ ہمارے پیر تھے، وہ ہمارے مرشد تھے، وہ ہمارے روحانی سرپرست تھے، مصلح تھے، وہ شیخ اول تھے، وہ شیخ ثانی تھے. اس طریقے پر آدمی بھولتا نہیں، یاد رکھتا ہے. تو اللہ کی نسبت پر جو بھی محبت اور دوستی ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی، اس میں عداوت کا سوال نہیں. اور جو دوستی ہو جائے گی دنیا کی بنیاد پر، اسی کا جس دوستی کی بنا فاسد، فاسد کے معنی وہی خراب، किसी भी बुनियाद दुनियावी कोई भी ताल्लुक की बुनियाद पर दोस्ती की, थोड़े दिन के बाद उसका अंजाम सामने आ जाएगा, नतीजा सामने होगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, हमारी दोस्ती हमारा ताल्लुक किसी से हो अल्लाह की निस्बत पर। हदीस शरीफ में आता है, सही हदीस है, बुखारी शरीफ में बार बार ये हदीस आई है कि सात किस्म के आदमी हैं जिनको अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने अर्श के साये में रखेंगे। अर्श का साया, ऐसी जगह जहां कोई साये की चीज होगी ही नहीं, वहां रहमान का अर्श का साया मिल जाएगा। गर्मी से, परेशानी से, लू से आदमी महफूज हो जाएगा। उसमें ये वरजुला ने तहाबा फिल्ला इस्तमा आले व तफर्रका आले, दो आदमी जिनकी आपस में मोहब्बत अल्लाह की निस्बत पर हो, इसी पर जमा हो इसी पर जुदा हो। जिन दो इंसानों की आपस में दोस्ती अल्लाह की निस्बत पर होती है कि मेरा हाजी भाई है, ये मेरा नमाजी है, ये मेरा मस्जिद का साथी है, ये मेरा दावत का साथी है, ये मेरा शेख है, ये मेरा पीर भाई है, इस अंदाज की दोस्तियां ये अल्लाह के लिए होती है। इसमें कोई गरज शामिल ना हो कि भाई चलो दोस्ती कर लो, ताकि कल उठकर दो 100,000 pounds उससे मैं ले लूंगा, हासिल कर लूंगा, या ये मुझको नजराने देगा, या मुझे हदिया और तोहफा देगा, ये नीयत ही ना हो, ख्याल तक ना आए इसका, सिर्फ अल्लाह की निस्बत पर दोस्ती, ये बड़ी कारामत दोस्ती है। अल्लाह ताला इसको बका अता फरमाए और हमें भी अल्लाह ऐसी दोस्ती की तौफीक अता फरमाए। तो एक मलफूज था जो आपके सामने सुनाएगा, फरमाया कि हक ताला तक पहुंचने का यही एक रास्ता है, हक ताला तक पहुंचने का यही एक रास्ता है कि अखलाक रजीला जाते रहें, जो गंदे और बुरे अखलाक हैं वो जाते रहें, अखलाक हमीदा पैदा हो जाए, जितने अच्छे अखलाक हैं हमारे अंदर आ जाए, जितने बुरे अखलाक हैं हमसे छूट जाए, मासी छूट जाए, ताअत की तौफीक हो जाए, जितने गुनाह हैं उससे आदमी एक एक करके छूट जाए, अलग हो जाए और अल्लाह की ताअत की बंदगी की तौफीक मिल जाए, गफलत मिन अल्लाह जाती रहे और तवज्जो इल्लाह पैदा हो जाए, गफलत का सिलसिला कम से कम हो जाए, ख़त्म हो जाए और अल्लाह की तरफ तवज्जो मजलिस में हो, गैबत में हो, हुजूर में हो, ये बात पैदा हो जाए तो समझो कि ये अल्लाह तक पहुंच गए, हक ताला का जो के करीब होने का मामला है वो अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हो गया। अल्लाह हमें ये चीज अता फरमाए, इसी के नाम है निस्बत, के निस्बत मुंतकिल हो जाए, निस्बत आ जाए, हर वक्त कनेक्शन रहे, हमेशा बाकी रहे, कभी फना ना हो, जुदा ना हो, टूटने ना पाए। अल्लाह ताला की निस्बत के बाकी रखने रहने का यही तरीका है कि तवज्जो रहे, ध्यान रहे। और आपने सुना होगा इसकी मोटी सी मिसाल जो बहुत से लोगों की देखी हुई भी होगी और किताबों में मौजूद भी है कि पहले जमाने में औरतें मटके पर मटका पानी से भरा हुआ रख कर चलती थी, एक मटका बगल में होता और दो मटके सर के ऊपर होते, छोटा सा रुमाल बांध लिया अमामे की शक्ल का, उसके ऊपर एक मटका रखा, उसके ऊपर दूसरा मटका और दोनों पानी से भरे हुए और अपना कुएं पर पानी भर कर अपने घर जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। अब उनके साथ और भी दो तीन औरतें हैं, बातें भी करती जा रही हैं, इधर उधर हरकत भी हो रही है, हिल भी रही हैं और मटके लेकर जा भी रही हैं। कैसी अजीब बात है, हालांकि इतना वजनी और जब आदमी चलता है तो यकीनन मटके को हरकत होगी, गिर जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ये जो मटके पर मटका पानी से भरा हुआ बाकी है और औरत चली जा रही है और वो गिरने नहीं पा रहा, ये क्या चीज है, ये ध्यान है। उस ध्यान ने दोनों को रोक रखा है, ध्यान है कि ये गिरे नहीं, ये गिरे नहीं, ये गिरे नहीं। तो न गिरने का जो एक मुसलसल ध्यान है, अब हरकत भी हो रही है फिर भी नहीं गिर रहा है, चल रहे हैं फिर भी नहीं गिर रहा है, बस ये ध्यान पैदा हो जाए, हम कहाँ हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की नजर हम पर है, अल्लाह हमें देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हमसे कोई गुनाह हो जाए, हमसे कोई गलती हो जाए। अल्लाह हाजरी, अल्लाह नाजरी, ये तसव्वुर, ये ध्यान जब पैदा हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर वही बात हो जाएगी जो यहाँ लिखी है कि तवज्जो इल्लाह पैदा हो जाए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। चंद बीमारियां इंसान में रूहानी होती हैं, बार बार आती हैं, किसी न किसी उनवान से आती है, जिसमें एक किब्र और तकब्बुर है, बुराई है। सुनते रहते हैं बाल उसी से मुतालिक एक मलफूज सामने आ गया है, और तरीका यह है कि जो मुश्किल मजमून होता है उसमें भी इसमें भी वो छोड़ देता हूँ, या कोई उलमा के बात खास काम की बात होती है उसे भी जिक्र नहीं करता हूँ जो इस वक्त के लिए मुफीद है। बाद मलफूजात ऐसे होते हैं जो जहाँ कहेंगे वहाँ के मुनासिब होते हैं। थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में बाद वो हैं जो हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं, अब उसके यहाँ इरादे की ज़रूरत नहीं तो उसको भी छोड़ देते हैं। बाद इस वक्त मजलिस के मुनासिब जो बातें होती हैं अल्लाह तौफीक देते हैं उन्हीं को बयान करते हैं, अल्लाह उससे हमारी इस्लाह फरमा दे। हमारा मकसद जो है वो अल्लाह से क़ुर्ब हासिल करना है, अल्लाह का ध्यान पैदा होना है। हजरत इसी के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि इंसान के दिल में हजरत शाह हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह कि बार मरतबा इंसान ये सोचता है कि मैं रोज़ा नमाज का पाबंद हूँ, इस्लामी लिबास में रहता हूँ, दाढ़ी भी रखता हूँ, वो फला आदमी है जिसकी दाढ़ी भी नहीं है, वो फला आदमी है जो गैर इस्लामी लिबास में रहता है, वो फला आदमी है बस वो नमाज ही नहीं पढ़ता है। तो कभी कभी दिल में ख्याल आ जाता है कि हम अच्छे हैं, यही बड़ा है, यही किब्र है कि अपने आप को इंसान अच्छा समझने लगता है हर इंसान से। तो वही बात जो हकीमुल उम्मत है थानवी रहमतुल्लाह अलैह के शादी से नकल फरमा रहे हैं, और हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि कल्ब तकब्बुर से पाक हो जाए। नंबर एक, रोजाना ये कहो कि अल्लाह मैं सारे आलम के मुसलमानों से कमतर हूं, फिलहाल मैं सारे आलम पूरी दुनिया के मुसलमानों से कमतर हूं इसी वक्त, कि नहीं मालूम मुझसे क्या अमल हो गया हो जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। और जो बेअमल है, मान लो शराब पीता है मगर है तो मुसलमान, कोई अमल शायद उसका अल्लाह को प्यारा हो गया हो और उसी पर उसकी माफी हो जाए। हम तो पकड़े गए, उसकी माफी हो गई। एक आदमी ने अपनी बीवी के खाने में नमक तेज करने पर सब्र कर लिया। जब उसका इंतकाल हो गया तो बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि पूछा क्या हुआ, उसने कहा कि अल्लाह ने फरमाया कि तुमने अपनी बीवी के नमक तेज करने पर उसकी पिटाई नहीं की, गाली नहीं दी, इस अदा को मैंने कबूल कर लिया, इसलिए तुमको माफ करता हूँ। सारी माफी मिल गई, सिर्फ एक मामूली बात। अल्लाह अकबर। नंबर दो, हकीमुल उम्मत है थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं ए खुदा अशरफ अली सारी दुनिया के जानवरों और काफिरों से भी बदतर है, क्योंकि नहीं मालूम कि मेरा खातिमा कैसा होगा। बताओ अगर खातिमा खराब हो जाए तो कुत्ते और सुअर हमसे बेहतर है या नहीं।
बिल्कुल,
लिहाजा ये दो जुमले आप याद कर लें। आज एक हदीस शरीफ है इन्नमल आमालु बिल खवातीम, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमल का मदार खात्मे पर है, कितने ही अच्छे हों खात्मा बुरा हो गया सब खत्म, कोई उसका असर नहीं होगा। इंसान बुरा हुआ खात्मा बखैर हो गया, इंशाल्लाह काम बन गया। हमेशा इसकी फिक्र रहे हम कैसे ही हों, अच्छे चाहे कितने ही बने रहे लेकिन अंजाम भी ऐसी होना चाहिए, आखिर भी हमारा ऐसे ही हो। हजरत मौलाना कासिम नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में एक हिंदू को जन्नत में देखा, हिंदू उसको जन्नत में देखा, पहचान होगी दुनिया में होती, वो हिंदू हिंदुस्तान में हिंदू होते हैं, घर घर में होते हैं, अड़ोस पड़ोस में होते हैं, दुकानों में जाते हैं, देखा हिंदू जन्नत, पूछा लाला जी तुम कैसे यहाँ टहल रहे हो तुम जन्नत में कैसे पहुंच गए? उसने कहा मौलवी साहब मरते वक्त कलमा पढ़ लिया था। कुछ दिल में बात होगी, जानता होगा इस्लाम क्या है, लेकिन कहने से डर रहा होगा दुनिया में कि सब मुखालिफ हो जाएंगे, तो नहीं कहा। लेकिन जब मरने लगा चुपके से कह दिया। हदीस शरीफ में आता है, हदीस शफात बुखारी शरीफ में भी है, हर जगह है, बहुत लंबी हदीस है। नबी करीम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की शफात फरमाएंगे, मगफिरत की, और मुख्तलिफ मौके पर। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दरख्वास्त करेंगे कि शफात का हक मुझे मिले, मेरी उम्मत की मगफिरत हो। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मुख्तसर ये कि जाओ जिसके दिल में एक जौ के दाने के बराबर भी ईमान हो उसको निकाल लो। फिर उसके बाद दोबारा फरमाएंगे जाओ जिसके दिल में राय के दाने के बराबर, राय का दाना जौ से छोटा होता है, उसके बराबर भी ईमान हो उसको भी निकाल लो। उनको निकालेंगे, पहले उनको फिर इनको, फिर फरमाएंगे जर्रा बराबर भी, जर्रा हवा में उड़ते हैं बारीक बारीक, कोई वजन भी नहीं होता उसका, इस जर्रे के बराबर भी ईमान हो उनको निकालो जहन्नम से, उनको निकालेंगे। अब कौन रहा बाकी? कोई भी नहीं रहा, सारे निकल गए। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि निकाल लिया सबको, कहा जितने जितने मैं जानता था, मुझे अंदाज हुआ वो सबको मैं निकाल लाया। फरमाया कि नहीं अभी भी कुछ है, ये है बात कहने की, अभी भी कुछ है। वो लोग जिनके दिल में कभी ईमान आया और उन्होंने चुपके से कलमा पढ़ लिया और कोई एक मामूली अमल भी दीन का नहीं किया, ऐसे बंदे वो होंगे जिनका पता किसी को नहीं चलेगा, न अंबिया को चलेगा, न फरिश्तों को चलेगा, न हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलेगा। अल्लाह ही जानते हैं, अल्लाह ही जानते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अब मेरी बारी आई, मैं निकालूंगा। और फिर अल्लाह ताला अपने दोनों हाथ मिलाएंगे। अब जैसे भी अल्लाह की शान हो, अल्लाह के हाथों की क्या अजीम हाथ होंगे, क्या कैफियत होगी, अल्लाह ही जाने। और फिर तीन मरतबा जहन्नम से उतनी मकदार के इंसानों को निकाल कर जन्नत में पहुंचाएंगे। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो कहने सकते हैं हजारों हजार ऐसे बंदे हैं। आज देखिए इस्लाम फैल रहा है, घर घर में इस्लाम पहुंच रहा है, लोग जान रहे हैं, लेकिन कितने ऐसे होंगे जो डर की वजह से इस्लाम कबूल नहीं करते कि समाज फिर हमें कबूल नहीं करेगा, बीवी निकाह से अलग हो जाएगी, फुला ये हो जाएगा, फुला हो जाएगा, औलाद हमें निकाल देगी, तिजारत छोड़नी पड़ेगी, ये होगा, हजारों बार। लेकिन कितने होंगे जिनके दिलों में इस्लाम की हक्कानियत आ चुकी होगी और उन्होंने कलमा पढ़ लिया होगा, आखिर आखिर में जाते जाते किसी को पता नहीं चला, अल्लाह तो जानते हैं, रब्बुल आलमीन है, अल्लाह को पता चल जाए तो आखिरी दर्जे में उनको निकालेंगे। जब ये मामला है तो बताइए फिर हम किस काफिर को भी हकीर समझते हैं? हो सकता है जो काफिर आपके घर आता हो, आपके यहाँ काम करता हो, आपके आपके अखलाक से मुतासिर हो गया हो, इस्लाम गोल नहीं ला रहा है, लेकिन उसने दिल दिल में इस्लाम को हक समझ लिया और कभी कलमा पढ़ लिया हो, ये मुमकिन है? हमें मालूम नहीं होगा, हम तो उसको काफिर ही समझेंगे, लेकिन अल्लाह के नजदीक उसने कलमा पढ़ लिया होगा और अल्लाह उसको जहन्नम से हमेशा के लिए निजात दे देंगे। तो जब ये हकीकत हो तो फिर हमें लाजिम है कि हम किसी काफिर को भी हकीर नहीं समझें। अब हजरत की बात बिल्कुल सही है कि सारे दुनिया के जानवरों और काफिरों से भी फिलहाल बदतर है, कह नहीं सकते क्या मामला होगा, क्या होगा। अल्लाह ताला हम सबको ये चीज अता फरमाए, दिल में ही हो कि हम कोशिश तो करें, मेहनत तो करें, लेकिन किसी को अपने से बुरा ना समझे। चंद मिनट जिक्रुल्लाह कर लीजिए।
Allah. السلام عليك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولأقاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا الله هم سبقنا حكم عافرما ہمارے زندگی بھر کے جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہیں آپ کی شان غفار ہے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارا کام ہی ہے گناہوں کا کرنا آپ کا کام ہے مغفرت کرنا اے اللہ آپ کی شان غفور و غفار اے اللہ جتنے ہی بندوں کے گناہ ہوں گے اس سے کہیں زیادہ آپ کی مغفرت اللہ وسیع ہے اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما ہماری زندگی کو اللہ پاکیزہ بنا اپنی محبت اللہ ہم سب کو عطا فرما اپنی معرفت نصیب فرما اللہ غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما اللہ اپنی ذات پاک کے ساتھ نسبت نصیب فرما تعلق عطا فرما اللہ آپ کو ہمیشہ دھیان میں رکھ کر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور نیک اعمال کی اللہ توفیق عطا فرما اللہ جب کبھی بھی آپ جس حکم کے لیے ہمیں اللہ حکم دے اللہ اس وقت ہم کو اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما اللہ جملہ پریشان حالوں کے پریشان کو اللہ دور فرما تمام بیماروں کو اللہ شفاء کامل عطا فرما اللہ مقروضوں کا قرض ادا فرما بے مکانوں کو مکان عطا فرما بے روزی روزگاروں کو روزگار عطا فرما اے اللہ جن کے اولاد ہے اے اللہ ان کے اولاد کو نیک بنا جو غیر شادی شدہ اللہ ان کی شادی کے اچھے جوڑے عطا فرما اے اللہ شادی ہو جائے اولاد کے متمنی ہو نیک اولاد عطا فرما اے اللہ تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما اے اللہ جو بھی قریب و بعید سن رہے ہوں اے اللہ سب کو مجلس کے اللہ روحانی اثرات سے مالا مال فرما اے اللہ دین کے جہاں جہاں جس انداز سے کام ہو رہے ہوں اپنے کرم سے قبول فرما اے اللہ اخلاق عطا فرما للہیت عطا فرما جہاں مسجدیں بن رہی ہیں مدرسے بن رہے ہیں اے اللہ ان کے تعمیر کی تکمیل فرما اے اللہ ان کے لیے تمام انتظامات فرما تمام رکاوٹوں کو اپنے کرم سے اللہ دور فرما اے اللہ اس ادارے کی بھی تعمیر کا خزانے غیب سے انتظام فرما ہر طرح کی رکاوٹ کو دور فرما سہولت کے ساتھ عافیت کے ساتھ اس کے تکمیل کی شکلیں پیدا فرما اے اللہ جو بھی مانگا اپنے کرم سے عطا فرما جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو عطا فرما اس مجلس کو مجلس کی حاضری کو قبول فرما اللہ نیک اعمال کو قیامت تک جاری رکھ کر اس کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی عطا فرما اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین وصلی اللہ وسلم